एक लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया था जब आरव और आयु ने खुद से एक दूसरे के सामने आने का फैसला किया। जहां एक तरफ आरव ये फैसला करके बैठा था कि वो आयु को किसी भी हाल में अपने पास रुकने के लिए मना लेगा, तो वहीं आयु इस जिद पर अड़ी हुई थी कि वो आरव के पास कभी वापस नहीं जाएगी और साथ ही उसे उसकी गलतियों के लिए सबक भी सिखाएगी। डिज़ायर्स में मीटिंग होने वाली थी, हालांकि आरव अभी भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं था कि मीटिंग अटेंड करने के लिए आयु ही वहां आने वाली है या नहीं। ऊपर से मीटिंग 11 बजे की रखी हुई थी और 11:30 होने को आए थे, फिर भी सेलिब्रेशंस की तरफ से वहां कोई भी एम्प्लॉई नहीं आया था। आरव गुस्सा हो गया था। आयु को अच्छे से पता था कि आरव को अपने काम में देरी पसंद नहीं है, उसके बावजूद तैयार होने के बाद भी वो आईने में खड़ी खुद को देख रही थी। अयान उसके कमरे के बाहर था और वो बार बार आयु को बाहर आने के लिए कह रहा था। लिसन आयु, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद सिर्फ मिस्टर खुराना ही नहीं, क्रिस्टी भी गुस्सा होने वाली है। और तुमने कहा था कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता है। पक्का तुम्हें डांट पड़ने वाली है, और तुम्हारी वजह से मुझे भी। अयान ने उसे बाहर से तेज आवाज में कहा था कि आयु जल्दी से बाहर आ जाए। अंदर आयु काफी बेपरवाह दिखाई दे रही थी। उसने शांत लहजे में कहा, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी चंडीगढ़ में ट्रैफिक काफी है, और उन्हें कौन सा पता है कि हम उन्हीं के ऑफिस से 5 मिनट की दूरी पर रह रहे हैं। थोड़ा सा देर भी पहुंचेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीरियसली, तुम इस तरह इंतजार करवाकर उनसे बदला लेने वाली हो? तुम्हें बता दूं मिसेस खुराना, ये बहुत ही बुरा आइडिया है, अयान दांत पीसते हुए बोला। अयान के बुरी तरह डांटने पर आयु को बाहर निकलना ही पड़ा। जहां अयान पहले आयु पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, वो उसे खोई हुई निगाहों से देखने लगा। आयु ने स्काई ब्लू कलर का डेनिम शॉर्ट्स पहन रखा था और उसके ऊपर वाइट कलर का शर्ट था जो थोड़ा ऑफ शोल्डर था। उसने अपने बालों को रोल कर रखा था और गले में एक पर्ल का सिंपल नेकलेस पहना हुआ था। उस लुक में वो काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन प्रोफेशनल किसी भी लिहाज से नहीं लग रही थी। कैसी लग रही हूं मैं? आयु ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन ये क्या पहना है? कल हमने इतनी शॉपिंग की थी, उसमें से तुमने कुछ नहीं पहना। हम मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं आयु, आरव खुराना को सिड्यूस करने नहीं, जो ये ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, अयान ने सर झटक कर कहा। फिर उसने घड़ी में टाइम देखा और आयु की तरफ देखकर फिर से शिकायत लगाते हुए कहा, तुमने पहले ही इतनी देर कर दिया, अब तो मैं तुम्हें चेंज करने के लिए भी नहीं कह सकता। मैंने कभी तुम्हें इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा। हाँ, तुमने तो क्या, किसी और ने भी नहीं देखा। तुम्हें इस ड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता, और देखते जाओ ये क्या कमाल दिखाने वाली है, आयु ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? आई नो ड्रेस अच्छी है और तुम हॉट भी लग रही हो, पर क्या कुछ और भी है इसमें? अयान ने हैरानी भरे लहजे में पूछा। जिस तरह से आयु कॉन्फिडेंट दिख रही थी, उसे साफ था कि इस ड्रेस के पीछे जरूर कोई कहानी होगी। चलो, तुम इतना पूछ रही हो तो बता देती हूँ। ये ड्रेस खुद आरव खुराना के डिज़ाइन की हुई है, लेकिन पहले मैंने इसलिए नहीं पहनी थी क्योंकि मुझे ये काफ़ी बोल्ड लगी थी। वो चाहता था कि ये ड्रेस मैं सिर्फ उसके सामने पहनूं, और आगे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आयु ने बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया। तब तो कहना पड़ेगा कि तुमने उसे टॉर्चर करने का काफ़ी अच्छा तरीका निकाला है। मुझे नहीं लगा था कि वो कैजुअल्स भी डिज़ाइन करता है, और इससे पता चलता है कि वो तुमसे प्यार करता है, अयान ने चलते हुए कहा। ऑफिस पास होने की वजह से अयान और आयु चलते हुए ही वहां जा रहे थे। वहीं डिज़ायर्स के मीटिंग रूम में इस वक्त माहौल काफ़ी गर्म हो गया था। वो लोग एक घंटे से बैठकर सेलिब्रेशंस की तरफ से मीटिंग अटेंड करने आने वाले एम्प्लॉयज़ का वेट कर रहे थे। अब तो आरव को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि आयु नहीं आने वाली है। एक घंटे हो गए आरव, क्या तुम अभी भी उन्हें कॉल करके नहीं बोलोगे? क्या कोई मजाक चल रहा है जो हम उनका वेट कर रहे हैं, या हमारे पास इतना फ्री टाइम है? जय जी ने आरव की तरफ देखकर सख्त आवाज़ में कहा। कोई इतना अनप्रोफेशनल कैसे हो सकता है? सच कहूँ तो सेलिब्रेशन कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन उनके इवेंट्स शानदार होते हैं और काफ़ी डेडिकेटेड कंपनी के तौर पर सब उसे जानते हैं। यही सोचकर मैंने उन्हें सेलेक्ट किया था। लगता है हमें किसी और को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, रुद्र बोला। वो भी जय जी की बातों से पूरी तरह सहमत था। तो वहीं दूसरी तरफ आयु ने अयान के साथ डिज़ायर्स में कदम रख दिया था। वहां हर कोई आयु को जानता था और उसे देखकर हैरानी से रुककर बस उसे ही देख रहा था। आयु जब अयान के साथ मीटिंग रूम में जा रही थी, उसी बीच मंथन भी मीटिंग रूम में ही जा रहा था, क्योंकि सेलिब्रेशंस के एम्प्लॉय ना आने की वजह से आरव ने मंथन को उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए बुलाया था। जैसे ही मंथन और आयु की नज़रें आपस में टकराईं, आयु ने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और जैसे ही उन सब ने दरवाजे की तरफ देखा, वहां अयान और आयु खड़े हुए थे। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वी आर रियली सॉरी कि हमें ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना, चंडीगढ़ हमारे लिए नया है, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा। अयान की बात सुनकर आरव ने उसकी तरफ घूर कर देखा। अयान के लिए भले ही चंडीगढ़ नया हो, लेकिन आयु लंबे समय से वहीं पर रहती थी। तो मीटिंग शुरू करें, आयु ने आगे कहा और वहां खाली पड़ी कुर्सी पर अयान के साथ जाकर बैठ गई थी। आरव बिल्कुल शांत था। वो आयु की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कुराहट उभरी हुई थी। आरव ने मन ही मन कहा, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था कि तुम पूरी तैयारी के साथ यहाँ आओगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह मेरे इमोशंस के साथ खेलोगी। खैर, अब जब तुम मेरे सामने ये ड्रेस पहनकर आ ही गई हो तो तुम्हें ये भी याद होगा कि मेरे इरादे उस वक्त क्या थे जब मैंने तुम्हें ये गिफ्ट की थी। मुझे उलझाने के लिए यहाँ आ तो गई हो मिसेस खुराना, पर उम्मीद है कि इस बार उल्टे पैर नहीं भागोगी। आयु को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसके लेट आने के बावजूद आरव ने कुछ नहीं कहा था और वो बिल्कुल शांत था। उसने एक नज़र आरव की तरफ देखना चाहा, लेकिन फिर उसने खुद को काबू करके रखा। उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव देखकर आरव के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट उभर आई थी। वेलकम मिसेज आयुष्का सिंह ओब्रॉय खुराना, आरव ने उसकी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराकर कहा। मेरा नाम सिर्फ आयुष्का है मिस्टर खुराना, तो इतने सारे सरनेम लगाकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आयु ने आरव की तरफ देखकर कॉन्फिडेंट मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जिस लहजे में आरव और आयु एक दूसरे से बात कर रहे थे, वहां बैठा हर एक शख्स आगे के बारे में अंदाजा लगा सकता था। वहां मीटिंग के बजाय एक बड़ा तमाशा होने वाला था जो खुद वो दोनों लगाने की तैयारी करके बैठे थे। मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी जल्दी है। चलिए फिर ठीक है, मीटिंग शुरू करते हैं। सब कुछ आप ही प्रेजेंट करने वाली है ना? आरव ने सिर हिलाकर जवाब दिया। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और प्रोजेक्टर की तरफ बढ़ गई थी। वो आरव की सीट के पास ही थी और कमरे की लाइट को डिम कर दिया गया था। आयु हर एक चीज को काफी डिटेल में और परफेक्टली प्रेजेंट कर रही थी। उसके काम को लेकर ये डेडिकेशन और मेहनत देखकर वे सब काफी इम्प्रेस हुए थे, जबकि आयु ने ध्यान दिया कि आरव प्रोजेक्टर के बजाय उसकी टांगों की तरफ देख रहा था।
थर की कहीं का, आयु ने मन ही मन बड़बड़ाया और आरव की तरफ घूर कर देखा तो आरव ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए थे। उसके चेहरे के भाव यही बता रहे थे कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और आयु को उसके सामने वो ड्रेस पहनकर नहीं आना चाहिए था। मीटिंग काफी लंबी चलने वाली थी। आयु पहले से ही लेट आई थी, ऊपर से हर एक चीज इस समय डिसाइड होनी थी। आरव ने बीच में लंच ब्रेक लिया और ब्रेक होते ही सब आयु से बात करने के बारे में सोच रहे थे। अयान ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आयु वहां पर मीटिंग के अलावा किसी और से कोई बात नहीं करेगी, ताकि वो उनमें से किसी के मैनिपुलेट करने पर कमजोर ना पड़े। ठीक है, फिर एक घंटे का ब्रेक लेते हैं, लंच साथ में करें? आरव ने आयु की तरफ देखकर सामान्य लहजे में पूछा, जैसे उन दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई हुई ही ना हो। आप लोगों की मर्जी, मुझे भूख नहीं है। आप लोग ब्रेक के बाद लंच करके यहाँ आ सकते हैं, मैं और अयान आपका यहाँ वेट कर लेंगे, आयु ने जवाब दिया, जिस पर अयान ने भी तुरंत उसकी बात पर हामी भर दी थी। लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारी परमिशन नहीं मांगी है, मुझे तुमसे बात करनी है, तो बेहतर यही होगा कि आप सब लोग यहाँ से चले जाइए, आरव ने सख्त आवाज में कहा। हर कोई उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। अयान समझ गया था कि आरव किसी भी हाल में अपने इमोशंस को काबू नहीं करने वाला है, और ऊपर से उसकी बातें साफ जता रही थीं कि वो आयु को जबरदस्ती अपने साथ बात करने के लिए लेकर जाने वाला है। आयु ने गहरी सांस ली और आरव की तरफ देखकर सधे में लहजे में कहा, मुझे आपसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर खुराना, क्या आपको मेरी प्रेजेंटेशन में कोई कमी लगी है, आपको कुछ चेंज करवाना है? मैं इसी के लिए यहाँ आई हूँ, तो आप बिना किसी झिझक के कह सकते हैं। क्या तुम हमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती? जयजी ने भारी आवाज में कहा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है मिस्टर ओबेरॉय कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ? मैंने कहा ना कि आपको प्रोजेक्ट को लेकर जो भी बात करनी है उसे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, आयु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जयजी की तरफ देखकर कहा। आरव ने गहरी सांस ली और आयु के पास आकर उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया था। आयु ने अपना हाथ आरव से अलग करना चाहा, लेकिन आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, नादान बनने का दिखावा मत करो, अच्छे से जानती हो कि यहाँ सब तुमसे क्या बात करना चाहते हैं, और मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे बात कैसे नहीं करती हो। हमेशा तुम्हें चीज़ों को अधूरा छोड़ना होता है और अपनी जिद करनी होती है। मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि आओ और मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है, तो तुम्हें करनी पड़ेगी। मेरा हाथ छोड़ो आरव, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ किसी तरह की जबरदस्ती करोगे, आयु ने आरव को घूरते हुए कहा। देखा, तुम तो समझती ही हर चीज़ को गलत तरीके से हो। मैंने कब कहा तुम मेरी गुलाम हो, और मैं बस जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। प्यार से तुम सुन कहाँ रही हो? अगर तुम जिद कर सकती हो तो मुझे भी तुम्हारी नहीं सुननी। ऐसे तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, समझी तुम? आरव ने सख्त आवाज में जवाब दिया और आयु का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले गया था। आरव रुको, तुम्हारा तरीका गलत है, तुम आराम से बात कर सकते हो, इस तरह तुम उसे हर्ट कर रहे हो। रुद्र ने पीछे से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आरव उसकी कहाँ सुनने वाला था। वो आयु को लेकर सीधा लिफ्ट के अंदर घुस गया था। वहीं उसकी इस हरकत पर अयान ने अपना सिर पकड़ लिया था। वो मन ही मन बोला, बस इसी की उम्मीद थी मुझे और यही होने वाला था। आई होप कि आयु अब तुम आगे के मामले को संभाल सको, मैं दादी को भी नहीं बुला सकता हूँ, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है आयु। अयान मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि आयु आरव के गुस्से और उसकी इज्जत को अच्छे से संभाल सके। वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट में आने के बाद आरव ने जल्दी जल्दी उल्टे सीधे बटन दबाने शुरू कर दिए थे ताकि लिफ्ट रुके ना और वो आयु से बात कर सके। वहीं आयु हाथ बांध कर खा जाने वाली निगाहों से आरव की तरफ देख रही थी। बाकी लोग लिफ्ट के सामने इकट्ठा हो गए थे। उनके रोकने के बावजूद आरव आयु को अकेले ले जाने में कामयाब हो गया था।
बस अब उसे कुछ भी करके आयु को खुद के दिल की बात बतानी थी, जो किसी भी तरह से उसकी इस जबरदस्ती के बाद उसे सुनने के लिए तैयार नहीं थी। जहां आरफ खुराना हो वहां पर सब कुछ ठीक तरीके से कैसे हो सकता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं। और प्लीज जो भी कहानी पढ़ते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉमेंट किया करो, बहुत कम रिव्यू आते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो मैं कहानी को अनपब्लिश कर देती हूँ।